बीच में घर जाने के बाद पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें फ्रांस का एक सैनिक था जो कि घायल हो गया। वो इतना घायल हो गया कि उसकी याददाश्त चली गई। उसे अस्पताल में लाया गया और उसका इलाज चला। उसके शरीर के घाव तो ठीक हो गए परंतु उसकी याददाश्त लौट कर नहीं आने लगी। वो खुद ही पूछता था मेरा घर कहाँ है, मैं किस गांव का हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। ये दो प्रश्नों को पूछता था, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। तो ऐसे तीन परिवार आए जिन्होंने ये दावा किया कि ये हमारे परिवार का है और इसको हमें दे दो, हम इसे ले जाएंगे। परंतु उस समय की जो सरकार थी उन्होंने ये निश्चित किया कि बारी बारी से इस सैनिक को तीनों गांव में ले जाया जाएगा और देखते हैं क्या होता है। पहले गांव में लेके गए तो वो वैसा ही था, सुन उदास, उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ। पूरे गांव से उसे घुमाया, कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई असर नहीं। दूसरे गांव में लेके गए उसको, वो वैसा ही दुखी, उदास, खिन्न, कोई असर नहीं हुआ। तीसरे गांव में जैसे ही लेके गए उसके चेहरे पर एक चमक आई, जैसे कि मूर्छित था वो, उसमें जैसे कि प्राण आ गए थोड़े। और थोड़ा अंदर लेके गए तो वो खुद से उस गाड़ी पे उतरा और यहाँ वहां देखने लगा जैसे कि ये गांव उसे परिचित है। और थोड़ी देर वो बहुत आगे भाग गया और फिर थोड़ी देर में एकदम भाग कर वो जा रहा है किसी गली में और एक घर के पास पहुंचता है और कहता है बस यही मेरा घर है और मैं इस घर का सदस्य हूं और मेरा फला फला मेरा नाम है। घर की स्मृति बहुत आवश्यक है। ये आत्मा को तब आती जब आत्मा एक बार उस घर को देख कर आए, वहां पहुंचे, वहां लंबा समय रहे तो उसको धीरे धीरे स्मृति आएगी कि यहाँ जो मैं हूं ये गांव मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये लोग मेरे नहीं है। उसको यहाँ घुमाया जा रहा है तो उसको लगता है ये मेरा है पर ये उसका नहीं है। जब वो वहां जाएगी और वहां रहेगी थोड़ा समय तब उसको एकदम स्मृति आएगी, यस दिस इज, ये है मेरा घर, ये है मेरा बाप, ये है मैं, यहाँ यहीं थी मैं, यहीं से भटकी थी और ये संसार में आ गई थी। तो गीत में था घर को पहली बार सुना, कौन सा गीत है ये? अच्छा गीत
है, जाते हैं तो सुनते हैं, बड़ा मजा आता है।
तो अब तो घर की स्मृति के लिए घर में, घर से होकर तो गुजरना पड़ेगा हर दिन, तो कहीं याद आए कि ये घर है।
दिखा तो देना साक्षात्कार वाली बात तो समझ की बात तो ठीक है,
तो फिर अच्छी बात है।
भगवान का साक्षात्कार कोई अच्छी बात,
पांच चीजों का साक्षात्कार करना चाहती है। एक तो आत्मा का, परमात्मा का,
घर
का,
स्वर्ग,
राजधानी का, और पांचवा विनाशी। ये पांच साक्षात्कार आत्मा की चाह है कि अगर ये हो जाए, जैसे उस दिन कहा ना हमको साक्षात्कार करा दो तो हम मान जाएंगे, सारा धन आपका, सारा माल उधर, साक्षात्कार करा दो बस। तो बाबा कहेंगे ठीक है तुम्हारा माल मुझे नहीं चाहिए, पर बाबा नहीं कहती माल अपने पास रखो। तो आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, बाबा किससे मिल रहे हैं, मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं, सेवाधारियों से मिल रहे हैं। पीछे से चालू करते
सेवाधारी
क्या कहा सेवाधारियों को बाबा ने,
बाप समान,
बाप कौन है,
सेवाधारी,
बाप भी विश्व सेवक है, तो बाप के बच्चे भी विश्व सेवाधारी। कैसी सेवा करनी है,
डबल सेवा
सेवा करते हुए मन से विश्व परिवर्तन की सेवा करते रहो, तो डबल सेवा करेगा तो डबल सेवाधारी जो होंगे वही
डबल
ताजधारी बनेंगे, सिंगल सेवाधारी होंगे तो
सिंगल भी नहीं,
सिंगल सेवा बोला ना, सिंगल
सेवाधारी डबल ताजधारी,
तो सिंगल डबल सेवाधारी डबल ताजधारी। तो बाबा ने कहा दिन भर चेक करो कि शरीर से जब सेवा करते हो तो मनसा से भी सेवा हो रही है, और एक बहुत ही सुंदर वाक्य है वहां पर, क्या करते रहो तो क्या हो जाएगा, बार बार क्या था, अटेंशन, अगर अटेंशन क्या नहीं
दोहराते रहो,
अटेंशन अगर होता रहे बार बार तो संस्कार बन जाएगा,
हाँ, बार बार अटेंशन देने से वो संस्कार बन जाएगा।
और एक बार वो अगर संस्कार बन गया फिर अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं, बार बार अटेंशन देते रहो तो संस्कार बन जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म बात कही है बाबा ने यहाँ पर, प्रैक्टिस अगर करते रहो
दोनों तो
काम स्वतः ही होते रहेगा। हाँ, स्थूल सेवा तो होती है, शारीरिक सेवा तो हो ही रहे है, बात है मन की, मन से स्थूल करते करते
छूट जाए,
शरीर से सेवा करते करते मन से सेवा। बाबा ने कहा अगर ये दोनों सेवाएं करते रहो तो जो भी देखे उन्हें क्या अनुभव होगा, नहीं ये दोनों सेवा अगर साथ साथ करते रहो संजय भाई तो देखने वालों को क्या अनुभव होगा, सेवाधारियों से मुलाकात, शरीर की सेवा और मन की सेवा, शरीर सेवा करते रहे, ये अलौकिक, यह अलौकिक शक्ति है, स्वतः ही पीछे आ जाएंगे, क्या अनुभव होगा उनको, ये अलौकिक शक्ति है, स्वतः ही वो पीछे आ जाएंगे। अगर दोनों सेवा साथ साथ हो तो अपने का बार बार अटेंशन रखो तो क्या हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा। दिन भर में दोनों सेवाएं करते हो मतलब शरीर की सेवा करते करते मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा भूल तो नहीं जाती, इसको चेक करो। हमेशा बाबा कहते हैं ना वन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, वो यही है। स्थूल सेवा तो होती रहती है, जिसकी जो डिपार्टमेंट है वो तो सब एक ही है, एक रीति से देखा जाए, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, हजारों के सामने भाषण देने की सेवा, एक ही है। उसके पीछे भाव क्या है, उसके पीछे मनोदशा क्या है, वृत्ति क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय उसके लिए वो सेवा क्या कर रहा है। तो बार बार अटेंशन दो तो संस्कार बन जाएगा, अटेंशन की बात है, खबरदार अटेंशन, सजगता, जागरूकता, वही बार बार भूल जाता है, बीच बीच में हम बेहोश होते हैं, बेहोशी सी छा जाती है, थोड़े समय के लिए, उस समय गलती होती है जो भी होता है। निरंतर अगर कोई जागृत रहे तो कभी कोई गलती नहीं होती। संपूर्ण जागृतता अर्थात आत्माभिमान स्थिति, आत्मा की स्मृति रहे, तो बार बार अटेंशन यदि है तो संस्कार बन जाए। जैसे वो एक बताते हैं, एक वृद्ध कलाकार है सर्गस का, यदि वृद्ध हो गया है तो उसका काम है कि अपनी पत्नी को वो सामने रखता है तख्ते पर और छुरे मारता है। सर्कस में इस तरह के खेल होते हैं, सामने खड़ी रहती है वो लकड़ी के तख्ता और वो छुरे मारता है। अब ये काम करते करते उसे लगभग 30 साल हो गए, परंतु उसकी पत्नी ऐसी झगड़ालू है कि अभी उसको उससे उब गया है, वो उससे मुक्ति चाहता है। जब देखो तब झगड़ा ही करती रहती, जब देखो तब क्रोध ही करती रहती। एक दिन यह सोचता है कि आज इसको खत्म कर दूं, बस बहुत हो गया, अभी बर्दाश्त की हद पार हो गई सारी। तो वो खड़ी रहती है, चाकू हाथ में लेता है छुरा, और अभी आंख बंद करता है, इतना क्रोध आता है अंदर में, क्रोध अंदर में, प्रतिशोध अंदर में, एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो जाती है उसके प्रति। इतनी घृणा उत्पन्न होती है कि उसको लगता है आज बस, आंखें बंद करता है और मन ही मन देखता है कि छुरा गया सीधा उसके सीने में, वो धंसा और रक्त के फव्वारे फूट रहे और लहूलुहान वो नीचे धरती पर गिर गई और मर गई। ऐसा दृश्य उसे मन ही मन दिखता है और जोर से, इसी भाव से और इसी प्रतिशोध से, इसी आवेग से वो जोर से छुरे का वार करते आंखें बंद करता है और ये सब मन में देखता है। पर आंखें खोलता है तो देखता है, अरे वो तो अछूती, वह मुस्कुराती हुई खड़ी है,
संस्कार
उसके बदन को छूते हुए जैसे वो उधर चला गया। अपने हाथों को देखता है, ए हाथ ये क्या है, उसकी कला के सामने उसके हाथ पराजित हो गए थे।
संस्कार
घड़ी घड़ी अटेंशन संस्कार ही ऐसे बन गए कि चाहते हुए भी अभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जो कला थी उसकी कला के सामने हाथ पराजित हो गए। वो चाहता था हृदय से कि उसको मारू, उसकी हत्या कर दू, इतना वो दुख देती है।
ना वो पहले भी मारता था तो लगता नहीं था,
नहीं कभी नहीं लगा ना, पहले लगा होता तो अब तो जिंदा थोड़ी। वो तो ऐसा खेल है कि वो छुरा जहां से मारता था आंखें बंद करके, कभी उसके कान से होके गुजरता था, कभी उसकी बाहों से होके गुजरता था, कभी उसके पैरों से होके गुजरता था, कभी उसके सब जगह से ज्यादा था, पर कभी उसको नहीं लगा आज तक। यही तो उसकी कला थी, यही करते करते इतने साल गुजर गए थे, परंतु आज जब प्रतिशोध के भाव से करता है तब भी कर नहीं पाता है। तो जब संस्कार बन जाता है तो फिर तो जैसा अच्छी चीजों के लिए है, ऐसे अगर बुरी चीजों के लिए भी अगर कोई संस्कार बन गया तो वो चोर कितना भी चाहे कि मैं चोरी नहीं करूं,
करेगा,
उसका स्वभाव उसे
खींच के ले
मजबूर कर देगा, वश विवश कर देगा चोरी करने के लिए। इसके लिए संस्कार, क्या कहा बाबा ने, बार बार अटेंशन ऐसा हो, बार बार आदतें ऐसी बनाओ कि स्वतः ही काम करने लगे थे संस्कार, वो संस्कार ही बन जाए, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, हम ना चाहते हुए भी होते रहे। इसके लिए बाबा ने आगे की लाइन क्या कहा, इस अभ्यास को बढ़ाओ, इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते नेचुरल और निरंतर हो जाएगी। यही कहा ना उसने सेवाधारियों से मुलाकात, संजय भाई, तो तुमको केवल शरीर से सेवा नहीं करनी है, मन से भी सेवा करनी है, मन से विश्व परिवर्तन की सेवा करनी है, विश्व कल्याण की सेवा करनी है, मन का से वाइब्रेशन दोनों की सेवा करनी है, साथ साथ हो दोनों भी, एक ही समय पर दो सेवाएं हो, ऐसा कहा बाबा ने उसने, एक ही समय पर दो सेवा, डबल सेवाधारी है तो वही डबल ताजधारी है, सिंगल सेवाधारी है तो सिंगल ताजधारी, उसके लिए दोनों ही सेवा साथ साथ और निरंतर हो, ये कहा सेवाधारियों से। उसके बाद डबल विदेशियों से क्या कहा, उसी के ऊपर, हाँ किसको, लवलीन के बारे में बात है, लवलीन अवस्था,
लगन में मगन,
लवलीन अवस्था, बाबा लवलीन बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लवलीन अर्थात क्या, जिनको याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही योगी है। लवलीन अर्थात खोए हुए कि याद करने का उधर पुरुषार्थ नहीं है, वो इतने खोए हुए कि उनके द्वारा स्वतः ही परमात्मा याद में है, तो वो स्वतः ही योगी है। लवलीन स्वतः ही योगी, उनकी बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि का जो इधर उधर भटकती थी उसको भी ठिकाना ठिकाना मिल गया। जैसे बाप और सेवा, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं उनके पास, इसके लिए बुद्धि का भटकना वहां बंद हो गया। वो स्वयं प्राप्ति स्वरूप है तो दूसरों को भी प्राप्ति स्वरूप कराने में तत्पर है, इसके लिए वो क्या है, माया चीज। तो जो लवलीन है वही योगी है, जो योगी है वही मायाजीत है, वही सर्व प्राप्ति स्वरूप है, वही दूसरों को सर्व प्राप्ति स्वरूप कराने वाले हैं और वही सफलता मूर्त भी कहलाते हैं। फिर वहां कहा ना सुपरमार्केट का, नहीं तुम्हारे पास में ऐसी आत्माएं आएगी कैसी जिनकी अलग अलग अनेक वैरायटी इच्छा है, वो सारी इच्छाओं को तुमको पूर्ण करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास शक्तियों का स्टॉक है तो ही तुम उनको संतुष्ट कर सकते हो। जैसे उदाहरण दिया विदेश में रिवाज किसका है, सुपरमार्केट का उदाहरण दिया ना, एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती है। तो जो भी शक्तियां चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो सब जो भी आत्मा है उसको एक ही जगह पर सब मिल जाए। तो मैंने उदाहरण दिया ना, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति, सारी शक्तियां हो जिसको जो चाहिए, मनोवांछित फल, हरेक का मनोरथ पूर्ण करना है, हरेक जो वांछित उसकी इच्छा है उसी अनुसार उसको देना है।
मन वांछित
वरदान में भी कुछ ऐसे ही था,
वरदान तो ब्रह्मदास के बारे में
होता।
अच्छा कुछ दिन पहले, हाँ मतलब उनको तुम्हें कष्ट नहीं देना है, क्यों मैं खड़े रहने की, आए और ले जाए, आए और ले जाए। आज तो ब्रह्म मुहूर्त
का
तुम्हारे ऐसी, बाबा ने उस दिन कहा था ना परोपकारी, फरिश्ते वाले भी कहा था उसके दूसरे दिन, परिष्ठा अर्थात क्या कि जो आत्माओं की पुकार सुने, उपकार इवन आत्माओं की पुकार सुने और उनके पास जाके समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान कर थकावट को उतारे आत्माओं की, एक दूसरा वरदान था। एक दूसरा वरदान आप जो बोल रहे हैं वो कष्ट भी ना हो उनको खड़े रहने का, बस आए और देते जाओ, आए और आते जाए और लेते जाए, आते जाए और लेते जाए, लाइन में खड़े रहने का कष्ट भी ना हो, ऐसी तड़पती हुई आत्मा आएगी तुम्हारे पास। तो ये यहाँ पर भी लोगों ने कहा है आज कि विदेश में जैसे रिवाज है सुपरमार्केट का, वैसा ही यहाँ पर भी आत्मा आए भरे और ले जाए। और क्या कहा वहां पर, एक तो लवलीन वाली बात थी, दूसरी ये सुपरमार्केट की बात थी और तीसरी मनसा सेवा की बात थी। विदेश में कैसे प्रभावित होंगे, मनसा सेवा से प्रभावित होंगे, पहले मनसा के वाइब्रेशन उनको खींचेंगे और फिर ज्ञान सुनेंगे। पहले ज्ञान नहीं सुना, पहले वाइब्रेशन फिर ज्ञान, पहले मनसा के वाइब्रेशन खींचेंगे फिर ज्ञान सुनेंगे। कई साल तो इसी तरह से पहले कहाँ सेवा हुई, 74 में गई तो दो तीन साल कुछ हुआ क्या खास, कुछ नहीं हुआ, पहले वाइब्रेशन और फिर किचन। बाबा ने कहा ये अभ्यास, मनसा को पावरफुल बनाने का अभ्यास ही यहाँ बनो और फिर अभ्यास यहाँ करो और अभ्यास ही बनकर उधर जाओ। यहाँ भी अभ्यास करो, उधर भी अभ्यास फिर कराओ। मधुबन के लिए भी ऐसा ही कहा, और भी एक पॉइंट है यहाँ मुझे याद नहीं आती। हाँ, सब लोग ये कहे कि ये भी कहे कि ये सुख और शांति के मास्टर दाता कहाँ है, और सबको ये अनुभव हो जब इतनी शक्तियां भर जाएगी तो जैसे शक्तियों की खान है ये अनुभव।
हाँ सोचने से भी जगा लेंगे आपको, नहीं पॉइंट नहीं
है, शक्तियों की खान नजर है, अनुभव हो सबको।
सत्य सपना आ गया,
ढूंढने की बात तो थी,
हाँ ढूंढते हुए आएंगे और कहेंगे कि वो सुख और शांति के मास्टर दाता कहाँ है, ऐसे कहेंगे। सुख और शांति के दाता, मास्टर दाता कहाँ है, ऐसे कहेंगे, और शक्तियों की खान अनुभव हो सबको इस तरह। तो यहाँ विदेशियों से बाबा ने तीन बातें कही, सबसे पहला तो लवलीन अवस्था, लवलीन अवस्था है तो पुरुषार्थ सहज है, वही माया जीत है, वही सर्व प्राप्ति स्वरूप है, वही सफलता मूर्त है जो प्राप्ति स्वरूप है और दूसरों को प्राप्ति स्वरूप कराने में तत्पर है, तैयार है, रेडी है, वही प्राप्ति वही सफलता मूर्त है। तो विदेशियों भी कहाना, ये भी कहाना, वहां पे योगी जीवन से तुम प्रभाव डालते हो, ये जो योगी जीवन के ही अनुभव से तुम सत्सेवा में सफलता मूर्त बनोगे। तो लवलीन कैसे होंगे संजय भाई? लवलीन अवस्था क्या है
यार? एकदम भराना पड़ेगा।
लवलीन अवस्था जैसे मीरा की अवस्था है, तो मीरा कोई साधनाएं नहीं कर रही है, मीरा कोई अपने मन को नहीं कह रही है कि ये संसार मिथ्या है, इस संसार से मुझे वैराग हो जाना चाहिए, वो तो इतनी प्यार में समाई हुई है, उसको पता ही नहीं उसकी जो अवस्था इतनी ऊंची चली गई है। उस अवस्था को पाने के लिए 100 सन्यासी खड़े है जिनको वो साधनाएं कर रहे है, अपने वासनाओं से युद्ध कर रहे, निर्वासना होने का की चेष्टा कर रहे, परंतु उसकी अवस्था कैसी है? सहज है, वो जैसे उसमें समाई हुई है, उसमें समाते ही ये संसार स्वतः ही छूट गया है उससे, उसे अपने आप को वैराग दिलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। वो ये नहीं कह रही है कि मुझे, मैं तो वैरागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, ये घर वालों से मेरा कोई संबंध नहीं, ये सब कुछ कर ही नहीं रही है वो खुद ही इतनी समाई हुई है उसमें कि वो सारा स्वतः ही छूट गया है, जैसे कि सूखा वृक्ष पत्ता झाड़ से गिर जाता है, झाड़ को भी पता नहीं चलता कब गिर गया, वो पत्ते को भी पता नहीं कब गिर गया, इतना सहज वो गिर गया, ऐसी उसकी अवस्था है। ये लवलीन अवस्था का गायन है।
सम्मान की जरूरत नहीं
उसको, वो सम्मान मतलब वो उसमें इतनी समाई हुई है, उसके अंतरिक अंतर मन ने इसे स्वीकार कर लिया कि मेरा ये एक ही है, इसके अतिरिक्त तो मेरा कोई है ही नहीं। हाँ, ज्ञान में आने के बाद जो अवस्था होती है धीरे 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 धीरे, वहाँ कोई किसी ने कहा कि बाहर का खाना छोड़ दो, कुछ कहा मतलब बहुत किसी ने पीछे पड़ा क्या हमारे? कोई नहीं, स्वतः ही सब कुछ हो गया, किसी ने कहा नहीं कुछ करने को, स्वतः ही सब कुछ जैसे 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 पता चला, एक बार सुना और छोड़ दिया, एक बार सुना और छोड़ दिया, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ रही है, ऐसी प्रतिज्ञा है कि आज की और फिर 10 दिन के बाद वापस टूटी और वापस करो, कोई वचन नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई संकल्प नहीं, स्वतः ही सब कुछ होना, क्योंकि वो अवस्था क्या थी? कुछ पाने के वो अनुभव था, वो लगन की अवस्था थी, वहां कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस यही सत्य है। परंतु वो जो अवस्था तब थी उसी अवस्था को वापस लाना है, फिर कहां खो गई पता नहीं 10-20 साल में क्यों क्या हो गया है पेट भर गया, बाबा कहते हैं ना तुम्हारा पेट भर गया है। भक्तों में सन्यासियों में लगन बहुत तीव्र होती है, क्योंकि उनको पाने की लगन होती है, जब पाने की इच्छा होती है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तब बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, बहुत तीव्र वैराग होता है। तो यहाँ आने के बाद पा लिया, शांत हो गया, फिर तो जो था ना नहीं, परंतु यहाँ पा लेने के बाद फिर उसमें बहुत कुछ कहा भी है, इसके लिए ये संतुष्टि बहुत अच्छी बात है कि पा लिया, परंतु फिर भी अंदर में ये हो कि हमने अभी पूरा समझा नहीं, सत्य की खोज और स्वयं की खोज फिर भी जारी हो। बाबा ने कल ही कहा ना मुरली में, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता,
खुद ही निश्चय कराता हूँ तुमको, मैं बाप भी टीचर
हूँ। हाँ, तो ये वाली भी बातें निश्चय कराता हूँ, और यहाँ जो बैठे हैं वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मुझे जानते हैं, सब नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कोई भी नहीं जानता, ये वाली बात। और एक बात थी, एक बात हम भूल गए वही पैराग्राफ में, जैसे बाप परफेक्ट है, तुम्हें भी बाप समान, कोई डिफेक्ट नहीं। ये बाइबल में ऐसे ही वाक्य आता है, बी परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जीसस कहता है तुम्हें वैसा ही परफेक्ट बनना है जैसा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में परफेक्ट है। बी परफेक्ट इवन एज योर, ऐसे ही वाक्य पापा ने कहा कि जैसे बाप परफेक्ट है तुम्हें भी बाप समान, कोई डिफेक्ट नहीं। लास्ट लाइन ऐसे बनना है। तो पा लिया, यहाँ हमारी प्यास शांत नहीं हो जाए, और बहुत कुछ पाना बाकी है, और बहुत कुछ जानना समझना बाकी है, संस्कारों को समझना, स्वयं को समझना, क्योंकि संस्कारों की इतनी परतें हैं, हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मैं हूँ, कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, कितना निकल रहा है, कितना माल है, पता नहीं किस किस जन्म का और क्या क्या भरा है। हमने ज्ञान को वो सृष्टि चक्र को ज्ञान को तो बच्चा भी समझता है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात उसमें फिर रिलेशनशिप्स की समझ, संबंध संपर्क, विकारों की समझ, व्यर्थ की समझ, निगेटिव की समझ, इस सृष्टि की समझ, जो हो रहा है, जो परिस्थितियां आ रही है उनकी समझ, माया की समझ, इतना विशाल चीज है ये। ज्ञान में आने के बाद तो रियल खोज तो यहाँ से चालू हो रही है, क्या है ये खोज बाद में चालू होती है। यहाँ इसके लिए जो अवस्था पहले थी वैसी अवस्था वापस लानी है।
अब तक की खोज पूरी हुई, ज्ञान मिला
अभी तो, अभी तो खाली भगवान मिला अभी, पर भगवान है क्या, उसका स्वरूप क्या है, वास्तविक क्या है, वो सारे प्रश्न फिर से वही निर्माण होना।
भगवान मिला, मिला तो
भाई मिला, परंतु उसने उसके पास जो इतना अथाह ज्ञान है वो हमने कहाँ लिया। आज कहा ना, ब्रह्मा जो है वो भाग्य का अमृत बांटता है, परंतु जिसकी बुद्धि अमृत कलश है, योग्य बनी है, वही उसको धारण कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। वो नहीं किया ना, केवल ज्ञान में आना ये पर्याप्त नहीं है, भगवान मिल जाना ये पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी खोज है। भगवान आया आप तक वैराग्य था, भगवान मिला वैराग खत्म हुआ, तो क्या मतलब है। यहाँ आने के बाद फिर वही सभी इच्छा है, वासना है, वही सब इच्छा उत्पन्न हो रही है जो कि गृहस्थ के जीवन में उत्पन्न होती है। यहाँ आने का क्या मतलब है सर, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है ज्ञान के, जिस पर चिंतन नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं होती है। तो ये था डबल विदेशियों से मुलाकात। तो एक तो लवली अवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे मीरा की अवस्था, जैसे दिखा चैतन्य महाप्रभु की अवस्था है, चैतन्य महाप्रभु का दिखा था निरंतर हरे कृष्ण, मतलब वो कृष्ण की स्थिति में रहता है निरंतर, उसकी तीन अवस्थाएं दिखा। एक अवस्था वो है कि जिसमें वो गुणगान कर रहे हैं, दूसरी अवस्था है कि वो थोड़ा सा बेहोश टाइप है कि उसमें खोया है, और तीसरा है तो बिल्कुल ही खोया हुआ है, वो संसार से अचेतन, अचेत, बिल्कुल पता ही नहीं संसार क्या है, जैसे पूरा एकदम अनकॉन्शियस। नहीं पता तो लवलीन अवस्था अर्थात ऐसी अवस्था कि जिसमें आत्मा खो ही रहे, जैसे रामकृष्ण परमहंस का भी दिखाते, वो इतना खोया रहता था कि उसको मतलब नीचे लाना पड़ता था खुद को भी, वो खुद संकल्प करता था कि अभी मुझे कुछ दो जिलेबी दो खाने के लिए, वो खाऊंगा तो थोड़ा देह में आऊंगा और ये जो भक्त बैठे इनका कुछ तो करूंगा कल्याण, कुछ तो बोलूंगा तो अच्छा निकलेगा, नहीं तो वो रहता ही नहीं था, बार बार भाव समाधि में जाता है, अभी अभी बैठा है, अभी अभी देखा नदी को देखा और तुरंत समाधि, अभी अभी देखा चिड़िया पंछी उड़ रहे समाधि, अभी अभी देखा सूर्य उदय हो रहा है सूर्यास्त हो रहा है, ऐसे प्राकृतिक जो भी दिख रहा है तुरंत समाधि, जैसे कि रिलेटिव कॉन्शियसनेस में, इधर भी नहीं इधर, जस्ट बीच में रखा है अपने आप को, वो भी संसार के लिए, ऐसी एक अवस्था। तो ये सब लीन अवस्था है, तल्लीन जिसमें आत्मा रहती है उसे पता ही नहीं इधर सबको, तो ऐसी अवस्थाओं में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ जब ऐसी लीन अवस्था नहीं है तब करना पड़ता है, बार बार से हमको बताना पड़ता है ये संसार आसार है, मिथ्या है, अनित्य है, नश्वर है, इनसे मुझे मोह नहीं रखना है, ये सब संघर्ष संघर्ष है। वो अवस्था है बाबा कहते लीन अवस्था, अर्थात याद में रहने का वहां मेहनत ही नहीं, स्वतः योगी है। तो ये था विदेशियों से मुलाकात दूसरा, फिर तीसरा
टीचर्स
से मुलाकात, क्या कहा
विशेष
टीचर्स विशेष सेवा है, क्या सेवा विशेष है उनकी,
बाप
को प्रत्यक्ष करने की, कैसी वाणी और कर्म, टीचर्स की वाणी द्वारा ज्यादा है, कर्म द्वारा कम, वाणी द्वारा ज्यादा करते हैं, माइक चाहिए, माइक आया तो बस तब तक सुना ही देंगे तब तक शांति नहीं मिलती है। परंतु एक बात है, भाषण देना और धारणाओं का ज्यादा संबंध नहीं है, याद रखना, भाषण देना और धारणाएं होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में कुछ धारणाएं हैं। 8 बजे तक आराम से सो जाओ, 9 बजे जाकर अमृत वेले पर लेक्चर दो, ये भी हो सकता है। और लोग कहेंगे क्या लेक्चर दिया, वाह आज तक ऐसा लेक्चर अमृत वेले पर सुना ही नहीं हमने किसी से भी, और वो अभी अभी उठ के आया 8 बजे, ये भी संभव है। क्योंकि भाषण देना तो एक कला है, वो कला है जैसे तुम पेंटिंग कला है, कुछ और कला है, वैसे वो भी एक कला है। खाना बनाना कला है, वैसे वो भी एक कला है। भाषण देने की प्रैक्टिस करते जाओ, उसके क्लासेस में वो सब करो, वो तुम भाषण देना चालू कर दोगे। संसार में वक्ताओं की कमी नहीं है, कई सारे वक्ता हुए। हिटलर के लेक्चर अगर सुनोगे तो ऐसे खून ये हो जाता है। ऐसे थोड़ी उसके, वो इतना अत्याचारी था, परंतु उसके अनुयायी और उसके जो फॉलोअर्स थे वो उसकी जो वो कहेगा मरने मिटने को तैयार होते थे उसकी बातों में, क्योंकि वो बात ही ऐसा करता था, छोटा सा कद उसका, पर जैसे भाषण बोलता तो ऐसा बोलता था कि जैसे आग पूरा
खून गर्म करने वाली,
खून पूरा गर्म कर देता था सबको। वो इतना वैसे बात करता था कि बस जर्मनी ही सब कुछ है, और ये जो जीव है जिसके विरुद्ध उसने अत्याचार किया उनको बस निकाल दो यहाँ से, उनकी तो नस्ल ही खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे ऐसे बात करता था वो कि उसकी भाषण सुनते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई महान व्यक्ति था। ये जो भी जितने हुए हैं तानाशाह, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, इदी, सिकंदर अलग प्रकार का, पर सिकंदर भी बहुत अच्छा वक्ता था। और ये भी जरूरी है कि जो बहुत अच्छे वक्ता है वो उनका खुद का ही भाषण, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छे भाषण कर रहे थे, पर उनका जो सेक्रेटरी था वो कहता था ये सारे भाषण मेरे ही लिखे हुए हैं। तो वो जब भाषण करने जाते थे तो एक नजर इसमें दौड़ाते थे, पर अपने रीति से वो बोलते थे, पर जो भाषण उन्होंने दिए वो सारे मेरे ही लिखे थे। तो वो तो एक कला है, जरूरी नहीं है कि, पर आज बाबा ने जो बातें भाषण के लिए कही है वो किसी भी किताब में इतनी बात दिखी नहीं है। जितनी पब्लिक स्पीकिंग की किताबें हैं, जितनी पब्लिक स्पीकिंग की कोर्सेस है, क्लासेस है, ये जो बातें कही ना, ऐसी बातें कही नहीं। उन किताबों में क्या लिखा रहता है, दूसरों को प्रभावित कैसे करे, फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, फिर हमको मतलब हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, इस रीति से बातें होती है।
देखना कैसे,
हाँ मतलब ये रहता है उसमें, अट्रैक्शन का केंद्र कैसे बने, वो भी अल्पकाल का। वो वही वही सारी जितनी किताबें हैं आज तक, कुछ कुछ अच्छी किताबें हैं उसमें अच्छी बातें भी लिखी है, पर बाबा ने जो बातें आज कही है इसमें और जितनी पॉइंट सुनाई है भाषण के लिए, वो तो शायद ही किसी धर्म के किसी साहित्य में या किसी दार्शनिक में कोई एक जो भी महान वक्ता है उन्होंने भी ये बातें नहीं कही। ये इतनी भारी बातें हैं कि इनको जितनी बार पढ़ो उतनी बार वो कम लगती है। इतनी सारी बातें बोल दी है उसने, एक एक लाइन में, एक एक शब्दों में कितना सार समाया हुआ है। बाबा ने कभी टीचर बहनों से मुलाकात करते हुए कहा है कि संसार के जो स्पीकर है, एक्टर्स है, वो हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, परंतु अशरीर नहीं बना सकते। अमिताभ बच्चन हंसा सकता है, रुला सकता है, वो अशरीर बना सकता है, इम्पॉसिबल नहीं बना सकता। जब तक यहाँ ये प्रोसेस के थ्रू जाते नहीं, बाप का बनना, राजयोग करना और सब कुछ, तब तक आत्माओं को अशरीर नहीं बना सकते। हंसा सकते हैं वो एक्टर, कॉमेडी कर सकते हैं, रुला सकते हैं अपनी एक्टिंग से, सब रो जाए, पूरा ऑडियंस रोना चालू कर दे, शरीर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
शरीर में ला सकते हैं, लेकिन अशरीर में नहीं,
अशरीर में नहीं बना सकते। बाबा की महावाक्य है टीचर बहनों के प्रति कभी, कि वो एक्टर्स कभी अशरीर में नहीं बना सकते। तो बाबा ने आज का टीचर अर्थात की विशेषता क्या है, कर्म और वाणी द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा अनुभव हो आत्माओं को कि ये महान आत्मा है, महान जीवन बनाने वाली आत्मा है। आगे और भी कहा ना, और क्या कर्तव्य है तुम्हारे, और क्या कर्तव्य है तुम्हारे। तो इसमें बाबा ने लवलिंग की बात कही है, जब स्टेज पर जाओ तो क्या करो, स्टेज पर जाओ तो क्या करो, और जब भाषण चालू करो तो आगे की बातें क्या करो। अभी स्टेज पर जाते ही तो आधा तो घायल वहीं कर दिया। क्या कहा वहां पर, कि ऐसे लवलिन रहो जैसे कोई संसार का व्यक्ति जो है जब किसी को प्यार हो जाता है तो उसके नैनों से, चेहरों से, चेहरे से, नैनों से और क्या वाणी से,
वाणी से
वो पता चलता है कि ये जैसे कि लवलीन है, आशिक
है,
वैसे तुम भी के प्यार में स्नेह और प्राप्तियों से संपन्न, स्नेह और प्राप्तियों से संपन्न ऐसे स्टेज पे हो तो क्या हो जाएगा, बाप के स्नेह में जितने हम समाये हुए हैं उतने ही स्नेह के बांध से वो स्नेह से घायल होंगे। घायल तो आधा आधा काम तो यही हो गया, अभी बोलना चालू ही नहीं किया है, अभी खा के बैठे हैं। भाषण तो बात की बात है, अभी बाबा ने कहा ना स्टेज, पहले तो स्टेज में जाके बैठे हैं, वहीं से वाइब्रेशन देना चालू कर दिए। वो कब होगा, पर जितना हम बाप के स्नेह में समाये हुए, जितना बाप का स्नेह दिल में समाया हुआ है, उसी अनुसार उसी अनुपात में
दिल से बाप के स्नेह,
हाँ नहीं वो आगे है, यहाँ जितना अंदर समाया हुआ है वही स्नेह के बांध से आत्मा स्नेह से घायल हो जाएगी। और ये जो घायल, ये जो घाव है, ये कैसा घाव है, परमात्मा स्नेह का घाव नहीं, नहीं घाव कैसा, वो तो अलग बात है। घाव कैसा है, यहाँ बाबा ने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये घाव कैसा है। ये बिल्कुल न भरने वाला घाव है, नॉन हीलिंग अल्सर, ये कभी हील नहीं होता है। एक बार ये किसी को घाव लग गया, ये हील नहीं होता, इसमें से जो खून बहता है वो बहते ही रहता है, ऐसा जबरदस्त घाव है। इधर लगता है ना सीधा, इसको डिवाइन बुंद कहते हैं। ये क्रिश्चियन लिटरेचर में इस तरह के जो है ना, रोमन कैथोलिक सेंट्स, उसमें उन्होंने इसका बहुत वर्णन किया, स्ट्रक बाय द हंटर्स, जैसे वो एक तीर लग गया है परमात्मा प्रेम का। एक जैसे वो सेंट फ्रांसिस डी सेल्स है, उसकी किताब है लव ऑफ गॉड, उसमें वो पूरा वर्णन करता है किस तरह से घायल हुआ है वो जीसस, यीशु क्राइस्ट के प्रेम से। वो ऐसा समझता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं जैसे ब्राइड हूँ, वो ग्रूम है, वो दुल्हन है, वो दूल्हा है, और वो दुल्हन और दूल्हों का जैसे रहता है वही सब कुछ वर्णन किया उसने, कि उसके प्रेम से मैं ऐसा घायल हूँ कि बस रक्त तो बह ही रहा है, क्या करूँ, कैसे रोकू अभी इसको, ऐसे ऐसे वाक्य उसके उसमें, कि परमात्मा प्रेम से मैं घायल हूँ, कैसे इसको, ये रुकता ही नहीं है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, विरह अग्नि में जल रहा है, ऐसे सब बातें। तो ये था स्टेज पे बैठने, अभी स्टेज भाषण चालू करने के, वहां पर बैठ के और भी बातें कही बाबा ने, वहां पर बैठ के क्या करो, पॉइंट को नहीं दोहराओ,
टॉपिक को नहीं दोहराओ,
लिंक नहीं करो कि क्या बोलना है, वो वहां बोलने की बात नहीं है, इनको तो वहां तो अथॉरिटी होके बैठना है, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो टॉपिक को पहले से ही बुद्धि में मनन करके स्पष्टीकरण किया हुआ हो, जो अथॉरिटी है उनको सोचने की जरूरत नहीं है, उनको पहले ही सोचा हुआ, तो जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको पहले से हमारा अध्ययन, ऐसा भी नहीं कि टॉपिक अध्ययन किया नहीं और हम बाप के प्यार में एकदम लवलीन बैठे हैं और सोच रहे हैं एकदम निकल जाएगा बहुत ही शक्तिशाली, ये भी नहीं हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, नहीं होगा अगर वो इतना शक्तिशाली योग है तो। परंतु बाबा ने कहा पहले बुद्धि मनन करके स्पष्टीकरण करो टॉपिक को, जितना टॉपिक तैयार होगा उतना अच्छा।
लेकिन बाबा ने कहा स्टेज पे
चढ़ने
के बाद टॉपिक का विचार नहीं
करना, वही ना, टॉपिक वहाँ नहीं करो, पहले से करते, पहले से ही मनन करो, चिंतन करो, स्पष्टीकरण करो, पहले से अथॉरिटी बनो, तो वहाँ सोचना नहीं करो। पर ऐसा देखा गया, ये भी वाक्य है कि सबसे बेस्ट पिचेस वो है कि जो विदाउट प्रिपरेशन होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन नहीं करो,
प्रिपरेशन तो
जरूरी है, परंतु फिर भी उसके बाद भी जो सबसे बेस्ट स्पीचेस है, एक्सटेम्पोर स्पीच इसको कहते हैं, बिना कोई प्रिपरेशन के बस खड़े रहे और बोल दिए, परंतु प्रिपरेशन की फिर भी जरूरत है, तो जरूरत है। जगदीश भाई को कौन सुबह बता रहा था, उनको कोई टॉपिक दिया था भाषण करने के लिए और टाइम पे टॉपिक ही चेंज कर दिया, तो उन्होंने फिर 10-15 मिनट और लगाए, मतलब थोड़ा एक बनाने के लिए अपने मन में क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं, वैसे जाके भी बोल सकते थे, लोगों को पता भी नहीं पड़ता था ये प्रिपरेशन नहीं किया, परंतु एक हाँ फॉर्मेट क्या क्या, लिंक क्या क्या है, हाँ परफेक्ट करने के लिए जरूरी है। नहीं तो क्या, जो हमेशा भाषण करते रहते उनको जरूरी नहीं है, वो तो किधर का भी टॉपिक किधर भी जोड़ देंगे, किधर की भी कहानी किधर भी लगा दो, कहीं का भी टॉपिक सुनने वाले को समझ में नहीं आता है फिर इतना, ये भाई कोई घुमा रहा है, उल्टा कर रहा है, मुरली डिस्कशन था, ये मुरली पर चर्चा करनी थी, पर उसने एक पॉइंट आया और पूरा उधर ही घुमा दिया, क्योंकि आगे का याद नहीं कुछ, एक ही पॉइंट पढ़ा, चार पेज की मुरली है, एक पॉइंट पढ़ा है, अभी ये मुरली का रिविजन करना है, तो एक ही पॉइंट पकड़ के पूरा भाषण की थी, किधर किधर घुमा दिया, लोगों की लगा क्या हो सकता भाषण, अरे पर वो मुरली का तो बातें आई नहीं, मुरली क्लास किसके लिए था, मुरली रिविजन क्लास, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जो सुना है वो गलत है, अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जो सुना है उसका मुरली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, परंतु पॉइंट्स अलग थी। यहाँ गलत कुछ है ही नहीं ज्ञान में, जो जो भी उत्तर दे और जो जो भी क्लास कराए सभी राइट है, परंतु उसके बाद भी एक होता है सारे पॉइंट्स लिंक। एक तो हम अगर कोई भी एक पॉइंट ले, बाप सुन आज की मुरली अगर चार पेज की, हम उसमें से एक उठा लेंगे लव लिंक, बस लव लिंक पर ही एक घंटा हो गया, वो रह गया बाकी का मुरली। तो इसका ये भी नहीं कि वो गलत है। तो आगे क्या कहा, भाषण कैसे हो फिर तुम्हारा, एक तो अथॉरिटी स्नेह हो उसमें, अथॉरिटी हो, स्पष्टता हो, मधुरता हो, कड़े कड़े बोल हो परंतु वो मधुर लगे, फिर भी कड़े होंगे फिर भी मधुर। तो अथॉरिटी, मधुरता, स्पष्टता, नम्रता, महानता, सत्यता। अभी सत्यता के लिए भी बाबा ने एक उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, वो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र वाले, उनके झूठे शास्त्र है, झूठे शास्त्र कितनी अथॉरिटी से सिद्ध कर बताते, केवल सिद्ध नहीं करते, मनवाते भी है और बुलवाते भी है, सत्वचन महाराज। और तुम्हारे तो अनुभव के बोल है, प्राप्ति स्वरूप के बोल है, उनके तो झूठे हैं, तुम्हारे अनुभव के बोल है, प्राप्ति स्वरूप के बोल है, वो झूठे और उतने कॉन्फिडेंट है, और हमको इधर धक-धक होता है, पता नहीं बताओ कि 5000 साल की बात कि नहीं बताओ, कोई विरोध करेंगे कि 5000 साल कहां से लाए। तो सभा में हम गए, 10 लोग बैठे, पहले ने कहा कि सृष्टि चक्र बताया, सतयुग की आयु 100000 इतने वर्ष, दूसरे ने इतनी बताई, तीसरे ने इतनी बताई, चौथे ने इतनी बताई, फर्स्ट स्पीकर, दूसरा स्पीकर खड़ा हुआ, उसने बताया कि कैसे हम 84 लाख यूनियन लेते हैं और कैसे अभी मनुष्य तन मिला। तीसरा स्पीकर वो आया और कहता है कैसे श्री राम आए, फिर हनु कृष्ण आए, और कैसे भगवान अनेक अनेक जन्मों में अवतार काल में अवतार लेते हैं। चौथा स्पीकर आया, वो कहा कि कैसे मनुष्य की आत्मा भगवान कैसे सर्वव्यापी है। पांचवा आया, छठवा आया, जो कह रहा है कि कृष्ण की महिमा कह रहा है कि कृष्ण ने कैसे गीता सुनाई। अभी आपको कहा कि बोलो
जो आपने बोला था,
फिर वहां पे फिर थोड़ा
चश्मा का सीख
भी, एक छोटी बहन ने बोल दिया था सब, तो बड़े बिगड़ गए थे सब।
नहीं पर ये भी है, एक बात देखा होगा, दादियां जब रहती है तो वो किसी सभा में कोई भी हो, सीधा मुख से बाबा बाबा निकलता है, और बाकी लोग रहेंगे तो भगवान,
परमात्मा,
प्रभु, ईश्वर, पवित्रता की बातें तो कोई नहीं करता है, पर ये दादियों को एकदम पवित्रता की प्रतिज्ञा जो करते हैं। एक बार मुझे पता है यहाँ पर ही प्रकाशमणि दादी ने बहुत खड़ा कर दिए थे, कितनी बार, और किसी ने किया नहीं था, वो क्यों नहीं करे, खड़े खड़े करो, कोई ऑफिसर बैठा था उसको भी करा दिया। तो वो बाकी कोई होगा तो थोड़ा सोचेगा भाई, ठीक है, नाराज ना हो जाए। हाँ बाबा ने यही तो कहा ना, अथॉरिटी और नम्रता का बैलेंस। अथॉरिटी के बोलो, अथॉरिटी मतलब उनको लगे, जैसे उदाहरण दिया, उनको लगे कि ये कौन है, कौन किसकी प्रत्यक्षता कर रहे, कहाँ से आए, क्या बोल रहे हैं, कि ये किसका संदेश दे रहे हैं, ऐसा उनको लगे, ऐसे अनुभव के बोलो। तो बोल बहुत महत्व, क्योंकि एक एक बोल में वाइब्रेशन होते हैं, बोल के पीछे हमारी भावनाएं काम करती है, तो बोल का प्रभाव तभी पड़ता है जब हमारी भावनाएं भी श्रेष्ठ हो। तो बोल कैसे हो स्नेह के, संयम के भी बाबा ने कहा, बोल स्नेह संयम श्रेष्ठ महान नम्रता मधुरता सत्यता निर्भयता। निर्भयता से सत्य को कहना, निर्भय रहना, नहीं तो डर ना लगे कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया हम कैसे करेंगे, वो तो एकदम ये सब नॉवेल है रामायण, हाँ वो नॉवेल ने हटा दिया वहाँ से, तो बाबा ने कहा रखो वहाँ पे, हटाया कि रामायण इज नॉवेल ऐसा लिखा था ना उधर,
बोला तो नहीं ना वहाँ पे, बोला किसी ने
इसको हटा नहीं तो यहाँ नहीं रहना।
अच्छा
जब तक इसको हटाया नहीं यहाँ नहीं रख सकते।
बिना बाबा से पूछे हटवा दिया तब बाबा ने कहा
ईद बकरी।
अच्छा
अपने लेवल पर फिर बाबा ने उसने और एक उदाहरण दिया शिवरात्रि का। शिवरात्रि में जैसे परमात्मा बॉम्ब, तो बॉम्ब जब फटता है तो क्या होता है, तो आग लगती है और लोग हिलते हैं। यहाँ बुद्धि को हिलाना है, आग लगना अर्थात जो स्वयं में है वही
दिल में है,
जो दिल में है वही प्रत्यक्ष करना, यह है आग लगना। और बुद्धि को हिलाना उनकी, तो बुद्धि को बुद्धि हिलेगी ये कौन है, ये किसका संदेश देते हैं, किसको प्रत्यक्ष करते हैं। ये भी एक उदाहरण दिया वहां पर। और कैसे वो बोल के लिए साइलेंस का प्रभाव भी हो उस बोल में, और भाषण की रूपरेखा कैसी हो वो भी कहा इसके बारे में। भाषण की रूपरेखा में स्वच्छ पवित्र प्यूरिटी के वाइब्रेशंस,
साइलेंस
हाँ प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, स्वच्छ रूहानियत, ये सब उसमें कितने सारी बातें हैं। और भी दो तीन है कुछ,
मर्यादा के अंदर
हो, ये भी एक पॉइंट है। संयम के हो परंतु मर्यादा के तो सत्य हो, निर्भय हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, मर्यादा के अंदर हो, साइलेंस का प्रभाव हो बोल में, अथॉरिटी के हो और पहले से प्रिपरेशन किया हुआ हो, अथॉरिटी के लिए पहले से प्रिपरेशन किया हो, पहले से मनन किया हुआ, पहले से बुद्धि में स्पष्टीकरण किया हुआ हो, और साथ साथ स्नेह और प्राप्ति संपन्न हो, और बाप से जुड़ाने वाले हो, हाँ बाबा से जुड़ाने वाले बोल हो। तो ये सब जब होगा ना तब कहीं जाके वो है भाषण थोड़ी बहुत तब सेवा होगी। यहाँ तो बस गए अपना भाषण कर दिया, ब्रह्मा कुमारी का परिचय दे दिया, आत्मा परमात्मा दे दिया और चले, ये हो गया अभी दूसरी जगह जाना है, वो हो गया अभी दूसरी जगह जाना है, वो क्या हुआ वो पता ही नहीं। ये उन आत्माओं के लिए श्रेष्ठ भावना है, उन आत्माओं के लिए अमृत वेले जहाँ जाना है वहां पर उनको ऑलरेडी सकाश दे चुके हो, जिसका हम कोर्स कर रहे हैं उसको रोज अमृत वेले सकाश देनी है, उस आत्मा से बातें करनी है। ये काम कम करते हैं वहां, बस एक का कोर्स, दूसरे का कोर्स, किसी का शाम को दो लोगों का कोर्स, शाम को तीन लोगों का कोर्स, धर 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 कोर्स।
थकान दूर करनी है बाबा ने बोला,
थकान दूर करने का माध्यम क्या है, योग ही तो थकान को दूर करता है। आत्मा देखो साइलेंस ही आत्मा की थकान, हम जब सोते हैं ना उससे थकान दूर नहीं होती है, थकान जो दूर होती है विवेक से, विवेक की जागृति से ही आत्मा की थकान दूर होती है, ज्ञान से ही आत्मा की थकान दूर होती है, साइलेंस से मौन से आत्मा की थकान दूर होती है, एकांत से आत्मा की थकान दूर होती है। कोई कहते हैं ना आज हमने दो दिन बहुत सेवा की, अभी तो बहुत आराम से सोना है, बहुत कल छुट्टी है और बहुत सोना है, ये सोने से को थोड़ी ना थकान दूर होती है। कोई कहते हैं मैं 8 घंटा आराम से आज सो जाएंगे, बहुत थक गए ना, बहुत सेवा की, कहीं गए थे बहुत सेवा की, अभी आराम से 2 दिन सोएंगे, अरे 2 दिन सोने से थोड़ी थकान जाती है,
और थकान हो जाती है,
वो धारणा ही गलत है। उस दिन था ना मुझे शरीर भी सो जाता है, परंतु मुख्य है आत्मा की बात है। तो आत्मा अगर आत्मा को अगर रिलैक्स कराना है तो वहां पे ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान की चर्चा से ही आत्मा रिफ्रेश होती है, और कोई माध्यम नहीं। आज छुट्टी है बहुत अच्छा खाना खाओ, ये खाओ और आराम से सो जाओ, निश्चिंत होके कोई टेंशन नहीं, ये सब आत्मा को और ही थकाता है और ही नीचे गिराता है, उससे नहीं होता है कुछ। और क्या कहा, एक तो ये रूपरेखा की बात हो गई, फिर बाबा ने उसके बारे में हाँ परमात्मा स्नेह का बॉम्ब कहो उसको, या फिर संबंध जुड़वाने वाला बॉम्ब कहो, लगन में मगन की अगन, वो आग है, वो थी आग जो आग लगती है और हिलते है तो बुद्धि हिले, और लगन में मगन की अगन और बॉम्ब का फटना अर्थात जो अंदर है वो बाहर, तो ये परमात्मा बॉम्ब है। फिर बाबा ने स्नेह मिलन के बारे में बताया नीचे, स्नेह मिलन अर्थात तीन परिभाषाएं बोलो ध्रुव भाई, स्नेह मिलन अर्थात बोलो, लगन में मगन स्नेह मिलन नहीं है, स्नेह मिलन अर्थात स्व परिवर्तन सबसे पहले से, औरों के परिवर्तन में सहयोगी, लगन में स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल में संस्कार मिलन की रात, जैसे वो हाथ मिलाते हैं और संस्कार मिलाते हैं, वैसे यहाँ संस्कार, जब सब के संस्कार एक हो जाए, बात समान हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक धर्म और एक एक राज्य आ जाएगा। और संस्कार मिलन की तीसरी परिभाषा सफलता हो जाएगी, कंप्लेंट खत्म और कंप्लीट, और एक चीज खत्म और दूसरा कुछ, तो वो कौन सी, उल्हाना खत्म और उल्हास, ये है स्नेह मिलन, तीन परिभाषा दी वहां पर बाबा ने स्नेह मिलन। तो ये था भाषण के लिए, और भी कोई भाषण की पॉइंट है जो होनी चाहिए, बोल सकते हैं सर, भाषण मतलब भाषण देना, क्या हमारा लक्ष्य केवल भाषण देना नहीं है, उसको भाषण भी कहना इतना अच्छा शब्द नहीं है,
भाषण तो नेता लोग देते
हैं, भाषण तो नेताओं में कितनी कला होती है भाषण देने की, क्राउड पुलर जिसको कहते हैं ना, भीड़ को खींचने वाले बहुत होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बस घायल इतना भयंकर भाषण
देते हैं, राज्य वाले,
हाँ वो
मुझे पढ़ने में आया धर्म राज्य वाले,
धर्म और नेता वो उधर है सेवाओं के लिए मधुबन निवासियों, चलो अभी मधुबन निवासियों से क्या किया, वो और वो एक ही है थोड़ा, मधुबन निवासियों से क्या करें, हाँ अरे हाँ ये एक पॉइंट रह गई है, बहनों को क्या, बाबा बैकबोन है, बाबा अभी गुप्त वेश में है,
कर्तव्य क्या बच्चों का,
तो बच्चों का कर्तव्य ये है कि जैसे अभी सुनाने वाले
नहीं, बाबा ने कहा बाप ने
पहचानते उनको पहचानते, और जो बनाने वाला है वो अभी गुप्त है, उसको नहीं पहचानते, जैसे बाबा ने इसको दूसरे शब्दों में कभी कहा है कि ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष है, पर ब्रह्मा कुमारी का बाप अभी प्रत्यक्ष नहीं है, ब्रह्मा कुमारी तो सब जानते हैं, हाँ शिव बाबा अभी प्रत्यक्ष, तो वो एक पॉइंट रह गई थी, अरे हाँ ये एक पॉइंट और एक रह गई, अभी इसमें एक तो ये था भाषण करने वाला क्या करे, अभी भाषण जब वो कर रहा है तो दूसरे जो ब्राह्मण सहयोगी है
वृत्ति
उनका क्या करे, वो वृत्ति से सहयोग दे,
वृत्ति का कुछ रह गया तो
वायुमंडल में वृत्ति है शब्द है क्या, हाँ अगरबत्ती का उदाहरण दिया है, जैसे अगरबत्ती ये करती है वायुमंडल को बनाता है, वैसे अगरबत्ती का काम करे, उनको भी संकल्प हो वायुमंडल बनाने का,
वृत्ति अगरबत्ती
उनका भी संकल्प हो वायुमंडल बनाने का, ये बहुत अच्छी बात है, भाषण देने वाला तो एक है, जरूरी नहीं है कि सभी भाषण देंगे, और दूसरे ब्राह्मण भी होंगे ना वहाँ पे सेवाधारी, तो उनमें भी वो कि फिर वहाँ ईर्ष्या का भाव नहीं हो कि भाई ये बोल रहे हम नहीं बोल रहे, हाँ यहाँ हुई थी पॉइंट, क्योंकि सबसे पहले जब ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी तब तक कभी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, तब लोग तब तक क्या समझते थे, सब एक ही है, हम लोग सब एक साथ सेवा करते, पर कॉन्फ्रेंस में देखा गया दो या तीन ही लोग भाषण कर रहे, तो बाकी लोगों का अरे हम तो पीछे रह गए ना, हमारा तो फालतू है, बस ये इनका ही नाम हो गया, क्योंकि नाम दो तीन का हुआ, तो उसके बाद फिर बाबा की दो तीन मोड़ लिया, तो उनको लगा कि भाई हमारा क्या, हम क्या स्टेज पे आएंगे ही नहीं, पर बाबा ने इसके लिए भी कहा है ना, अभी ये मत समझो कि जो भाषण दे रहा है उसका बहुत ही बड़ा भाग्य है, अगर वो उसमें तो और खतरा ज्यादा है, वो भाषण दे रहा है और उसको अहंकार आ गया तो गया ना, वो
सताया हो गया
उसको लगे कि देखा कितना अच्छा भाषण दिया, तो और अहंकार आ गया उसमें, तुम तो ठीक हो, एटलीस्ट अहंकार तो नहीं, हाँ फिर भी ठीक है, तो ये जो फूस फूस के पाव रखने सब जगह
बर्तन वाला झाड़ू वाला सबको ही खतरा है, अगर फीलिंग आ गई हीन भावना आ गई तो भी गया काम,
सब चीज में है यहाँ, इसके लिए तो खबरदार और सावधान जागृत अवस्था चाहिए, होश की अवस्था चाहिए, पता नहीं ये माया कहाँ से और कब आ जाती है न मालूम, इसको कैसे पता चलता है कि ये हम में कमी है, कहाँ से उसको सब पता चल जाता है, उसके जासूस हमारे जासूसों से भी, उसकी उसका गुप्तचर विभाग हमारे गुप्तचर विभाग से ज्यादा सक्रिय है,
उसको बुद्धि नहीं लेकिन ज्यादा बुद्धिमान है,
हमारे गुप्तचर उससे मिले हुए जैसे चाणक्य के गुप्तचर ऐसे सक्रिय रहते हैं कि दूसरे जितने आसपास जितने लोग हैं चाणक्य के, वो सब चाणक्य पर नजर रखते हैं, परंतु उसके गुप्तचर इतने सूक्ष्म है कि शत्रु अगर एक चाल चलता है वो उसकी बुद्धि उससे आगे चलती है। वो इतना बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं कि चाणक्य सोच भी नहीं सकता ऐसा षड्यंत्र वो लोग बनाते हैं, परंतु उसका षड्यंत्र उनसे एक कदम आगे ही रहता है। वो ये सोच के बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वो ये समझेगा कि ऐसा हुआ है, पर वो ये भी समझ लेता है कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा सोचूंगा, पर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा मैं कुछ और सोचूंगा। वो षड्यंत्रों में भी वो अपने आप को इतना आगे रखता है क्योंकि उसके गुप्तचर विभाग इतना कहां से भी किसी को भी पकड़ लेता है, उसको हरा नहीं, कोई हरा नहीं सकता है उसको, ऐसा ही दिखाया है उसका चरित्र। तो ये माया को पता चल जाता है, पर हमने ये है वो है, और बराबर टाइम पर वो जैसे इंतजार है, ताक में रहती है कि कब इसको अच्छा ये हो गया भाषण के लिए, और जो सहयोगी है उन्हें भी कैसा भाषण, उन्हें भी क्या उनकी वृत्ति हो। अच्छा उसके बाद मधुबन,
मनसा सेवा के लिए भी दो
बात, अरे ये भी पॉइंट रह गया, देखो रही जाती है कितना यहाँ से, ये जब क्लास पूरा होता है और यहाँ से जब जाने निकलता है कमरे पर वहाँ पे चार पॉइंट ही आती जाती है हमेशा, ये तो रह गया था, फिर बोले छोड़ो अभी जाने दो। हर बार ऐसे होता है कि यहाँ से जब कमरे में पहुंचता हूँ तो चार पांच पॉइंट
क्या बात
तो बाबा ने कहा क्या करना है, पत्थर भी स्नेह का पानी देकर उसको पत्थर को भी पानी बना दो, हम पत्थर को भी पानी बना दो, डाल डाल के पत्थर को भी पानी बना दो, मतलब चाहे कैसी भी आत्मा हो। हाँ वो पॉइंट को दोहराना नहीं है, पॉइंट को लिंक में ले लाना, एक बार वहाँ बैठ गए भाषण देने वो सब पहले ही कर दो, पुष्टिकरण स्टेज पे तो बस प्राप्ति स्वरूप स्नेह स्वरूप ऑथोरिटी निर्भय सत्य नम्रता महानता श्रेष्ठता जुड़ाने वाला और रहम के शब्द हो, ये भी रह गए तुम्हारे रहम के शब्द हो, रहम के शब्द हो तुम्हारे, ऐसे नहीं कि उसमें घृणा, जैसे वो विंस्टन चर्चिल था वो भाषण बहुत जबरदस्त देता था, पर उसने अपने खुद के अनुभव में लिखा है कि जब मैं भाषण देता था ना तो मैं पहले अपने मन को तैयार करता था कि मेरे सामने जितने लोग बैठे सब मूर्ख है और मुझे इनके सामने भाषण देना है, वो ऐसे तैयार करता था अपने आप को और प्रभावित करता था लोगों को। संसार के जो वक्ता लोग है वो इस तरह से अलग 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 विधि है,
मनसा कैसी बना,
विवेकानंद का दिखाया है कि उसको पूछा कि आप कैसे बोलते हो इतना शक्तिशाली, कौन आप प्रिपरेशन कब करते हो, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है प्रिपरेशन को, अभी भाषण यहाँ दोपहर को वहाँ शाम को वहाँ दूसरे दिन, और टॉपिक हर दिन अलग अलग, भारतीय संस्कृति भारत के धर्म क्राइस्ट बुद्ध महावीर भिन्न भिन्न टॉपिक सारे, मतलब प्रिपरेशन कब करते हो। तो उसने कहा जब रात में मैं सोता हूँ तो ये जो जिस टॉपिक पर मुझे बोलना होता है वो सारा मुझे चित्र के रूप में सब कुछ दिखता है, और दूसरे दिन जाकर बस मैं वो चित्र में जो देखा उसको बस शब्दों का रूप दे देता हूँ, बस और कुछ नहीं देता, ऐसे कहा उसने। ट्रांस में नहीं, बस उसको मतलब उसके उसके सामने दिखता है उसको बस ये
क्लियर बुद्धि,
क्योंकि बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत तीव्र है, और प्योरिटी का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावर। वो तो दिखाया ना, एक जगह वो रुकता है कहीं और वहां पे लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, पहले दिन किताब लेके आता है लाइब्रेरी से, दूसरे दिन लौटा देता है, फिर तीसरे दूसरे वापस एक किताब लेता है, वापस दूसरे दिन लौटा देता है, ऐसी बड़ी बड़ी किताबें। वो दसवें दिन वो लाइब्रेरी वाला बोलता है आप क्या कर रहे हो, पढ़ते हो कि बस ऐसे ही लेके जाते हो ले आते हो एक ही दिन में इतनी बड़ी किताब। तो वो कहता है कि पूछो, और जो जितना पूछता है सब बता देता है। तो वो तो बुद्धि की बात है। चलो अभी मधुबन निवासी से क्या कहा, कहाँ भूमि है ये, बाबा किसको मिलने आए, भाग्यशाली जो यादगार भूमि है, महान भूमि महान तीर्थ, वहां पे महान भाग्यशाली बच्चों को मिलने आए। हमारे हॉस्पिटल में भाग्यशाली नाम का एक लड़का एडमिट है, भाग्यशाली यही लेके आए, इनके ही गांव का है और इन्हीं ने नाम रखा है उसका भाग्यशाली, लड़के का नाम ही है भाग्यशाली।
और बीमार हो गया?
बीमार नहीं, कुछ और ही है। तो बाबा किससे मिल रहे हैं? यादगार भूमि में रहने वाले, महान भूमि में रहने वाले, महान तीर्थ में रहने वाले, ऐसी भूमि से महान भाग्यशाली बच्चों से मिल रहे हैं। ये कौन सी भूमि है कि जिसको
भक्ति में
ये समर्थ भूमि के लिए बाबा ने पहले कहा कि ये व्यर्थ को समाप्त करने वाली भूमि है, समर्थ बनाने वाली भूमि, और तीसरा प्राप्ति का अनुभव, अनुभव का खजाना प्राप्त करने की भूमि है।
स्थूल और सूक्ष्म अनुभवों की खान,
स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडार है,
भंडार
ये दूसरा आगे का पॉइंट है, भंडार भंडार बोला
भंडार।
तो ये समर्थ भूमि के लिए बाबा ने कहा। फिर ये वरदानी भूमि है, दो बातें पहले कही है, पहले समर्थ के बारे में और फिर वरदान। यहाँ पर याद से और भूमि से जो वरदान चाहो वो पा सकते हो। और ये भूमि वो है कि जिसके लिए भक्त लोग क्या कहते हैं, तड़पते हैं। भक्त किस लिए? दिव्य भूमि के दर्शन के लिए तड़पते हो। तो आप दर्शनीय मूर्त हो? प्रश्न पूछे। और एक दूसरा प्रश्न पूछा, जो दूर रहने वाले हैं वो भी केवल स्मृति से समर्थ बनते हैं, तो यहाँ वालों का क्या हाल
होंगे?
वो केवल याद करके समर्थ को प्राप्त होते, बल मिलता है उनको। और यहाँ वाले नहीं, वो सिद्धि स्वरूप का दूसरा पॉइंट है, वो है कि यहाँ मधुबन में रहना अर्थात यहाँ का संघ, यहाँ के साधन, वायुमंडल का साधन, भूमि के सहयोग और वायुमंडल के महत्व से ज्ञान सिद्धि स्वरूप बने हो। यहाँ संघ भी है, साधन भी है, वायुमंडल का सहयोग भी है, भूमि का सहयोग भी है, भूमि के महत्व का सहयोग और वायुमंडल, ये चारों चीजें है, उससे क्या बने हो? सिद्धि स्वरूप बने हो।
प्रश्न है?
हाँ प्रश्न पूछा। फिर बाबा ने थोड़ा चेंज किया वहाँ पर कि एक साल हो गया, नहीं वो साल भी पूरा हुआ, उसको पहला महीना भी पूरा हुआ, फिर अभी दो महीने हो गए, सेकंड फरवरी की मुद्दी है ना, तो अभी हर कदम में हर कदम में जमा करते हो, स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाया है, चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी है, अलग अलग पॉइंट डाले हैं। तो समय के अनुसार दूसरे भी फरिश्ता, दूसरों को भी फरिश्ता नजर आए,
चलते चलते फरिश्ते नजर आए, ऐसी नहीं है क्या?
जैसे मेजोरिटी कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको अनुभव होता है कि ये फरिश्ते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको हर समय ये अनुभव हो कि ये फरिश्ते हैं, ऐसे कुछ है।
चलते चलते
एक देखो देखे तो फरिश्ता नजर आए, एक देखो एक दो को देखे तो फरिश्ता नजर आए। और एक पॉइंट,
एक एक तो होता है, कभी कभी होता है, बाबा ने कहा कि कभी कभी किसी को होता है।
हाँ कभी कभी किसी को होता है, पर अरे हाँ ये वाली पॉइंट है, हो गया। बाबा ने कहा कि सब लोग ये तो मानते हैं कि अच्छा सेवाधारी है, परंतु ज्ञान योग धारणा युक्त हो, ये तो मानते हैं।
सेवा का सब सर्टिफिकेट
होता
है, स्वर्ग की महिमा करे,
स्वर्ग जैसे स्वर्ग की महिमा करते, वैसे व्यक्तिगत स्वर्ग के या अनुभव की महिमा प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसे कुछ कहा है। वो भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव व्यक्तिगत,
टोटल
वायुमंडल का, हाँ टोटल वायुमंडल में तो स्वर्ग का अनुभव है, परंतु व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग का या प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। हाँ वर्गीकरण की सेवा, उसमें क्या कहा, उसमें क्या कहा, अभी हर वर्ग की सेवा करें,
संबंध संपर्क बढ़ाओ,
संबंध संपर्क हल्के हो जाते हैं, पहले तो रखते हो फिर हल्के हो जाते हैं, अभी इसको बढ़ाओ। अभी जैसे पहले क्या सोचते थे कि हर एक का भाग्य बने, वैसे अभी क्या सोचो कि जो भी संबंध संपर्क में है वो। और एक पॉइंट है, अपने अधिकार से इशारा मिलते ही वो सेवा करे, उनके अपने अधिकार से, उसको खाली इशारा मिले पर सेवा अपने अधिकार से करे,
अपनी
अथॉरिटी से, अधिकार या अथॉरिटी से, हाँ सेवा करे। और फिर जैसे दूसरों का तुम पहले भाग्य बनाते हो, वैसे अभी उनको क्या कहो, सहयोग लो,
लो उनसे,
उनसे सहयोग लो। ये ना एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट है सारी,
मतलब कोई भी कैसे भी हॉस्पिटल नास्तिक भी
है, नास्तिक को भी संपर्क में लाओ। क्यों नास्तिक में लाओ संपर्क? क्योंकि विश्व विश्व नए नई दुनिया नए विश्व की स्थापना के लिए हर प्रकार का बीज चाहिए, और विश्व पिता का टाइटल है तो हर प्रकार की आत्माएं यहाँ चाहिए, वेराइटी चाहिए यहाँ पर। इसके लिए संपर्क में सबको लाओ, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो,
चाहे वो ज्ञान ना सुने,
लेकिन चाहे कैसे भी हो, खिंचके ऐसे खिंचके वो विदेशियों के साथ बोले।
नहीं, इसमें है बाबा ने कहा, चाहे वो ज्ञान ना सुने ना सुने,
ये बाबा के शब्द ध्यान रखना सादी बात नहीं है, वो थी
बाबा ही बनना पड़ेगा,
बाबा बनना पड़ेगा। जिस प्रकार की ये हिंदी है ना, ये कोई हिंदी साहित्य की हिंदी नहीं है, ये वाक्य
भगवान की हिंदी है,
क्या है ये, बड़ा मुश्किल है। बाकी तो कितना सिंपल, हिंदी देखो न्यूज़पेपर पढ़ो, कितना था सिंपल सिंपल, ये तो कहाँ चालू हो रहा है और कहाँ कॉमा ही नहीं है, कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, चालू है वहां से चालू हुआ, चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है, चालू अभी भी चालू ही है। उसमें ये उदाहरण है, ये उसके जैसा, उस उदाहरण के अंदर और एक उदाहरण है,
जैसे
वो उसके जैसा, वो उदाहरण अभी पूरा हुआ नहीं है,
दूसरा उदाहरण,
वो उदाहरण किस लिए दिया जा रहा है, वो जो चीज के लिए उदाहरण दिया है पहले उसको भी देखना पड़ेगा कि ये उदाहरण उस चीज को समझाने के लिए दिया जा रहा है। अभी उतना भी समझ लिया, पर ये जो उदाहरण है इसके अंदर और एक दूसरा उदाहरण है। ऐसे कवियों की कवि है इधर साहित्य, जिसके नाम है भगवान आज। हाँ, तो क्या कहा, संपर्क में सबको लाओ, क्योंकि नए विश्व के लिए हर एक प्रकार का बीज चाहिए, इसके लिए तभी विश्व पिता का उसका टाइटल सिद्ध होगा। और कोई बात कही वहां पर, एक लास्ट लाइन,
धर्म राज्य के नेता,
हाँ धर्म के धर्म नेता है, और दो सत्ताएं बताई ना, तीन सत्ता है, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, इसमें दो सत्ताओं के लिए कि दो सत्ताएं भी माने, क्या माने कि इनकी विधि और ये अच्छी है, क्या अच्छा है, विधि और
परिवर्तन,
परिवर्तन इनका अच्छा है,
बहुत अच्छी
है, बहुत अच्छे है
इनका परिवर्तन, अच्छी
विधियों का परिवर्तन और जो विधि है वे बहुत अच्छी
विधि,
धर्म सत्ताएं भी ऐसे अनुभव करें,
वो भी अनुभव
धर्म।
तो सारी मुरली किस पर है, पूरा हो गया ना,
वर्तन का टाइटल है, इसलिए वैरायटी चाहिए ना,
वैरायटी चाहिए। सबसे पहले तो मधुबन निवासी, मधुबन निवासियों के लिए, हाँ जो स्थान और स्थिति, स्थान की महिमा जितनी स्थिति की भी तो महिमा है, जितना स्थान महान है उतना ही स्थिति महान है, ये तो बोले हम,
कोई बात नहीं, दो चार बात में भी आएंगे।
तो स्थिति और स्थान, तो हम जिस स्थान पर रहते हैं वो सबसे महान स्थान है, इसके लिए स्थिति भी महान चाहिए, ये एक पॉइंट। इसमें दूसरा, ये तो संपर्क, जो भी संपर्क में लाते हो सबको संपर्क में लाओ, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है भाषण का, तो भाषण की प्रिपरेशन कैसा, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे सामने सभा ही हो, इमेजिनरी ऑडियंस के सामने भी भाषण दिया जा सकता है, काल्पनिक, अपना एक भाषण तैयार करो, एक ही टॉपिक ले लो, सहनशीलता की शक्ति, अभी सहनशीलता के ऊपर हमको बोलना है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि पहले हमने सोचा नहीं होता है उसके बारे में, और जब बोल रहे थे तो अचानक वो एकदम पॉइंट फ्लैश होती है और एकदम वो क्लियर हो जाती है, जबकि तीन बार पढ़ रहे थे उसको और वो समझ में नहीं आ रहा था, पर जब बैठे और किसी के साथ में बोल रहे थे तो अचानक वो समझ में आ गई। तो हाँ बाबा, चलो बाबा को नहीं लाओ इसमें, वो वैसे ही टच हो जाती है, क्योंकि संसार के भी नियम है कि जब चर्चा की जाती है तो जो पॉइंट हमारे दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी वो मुरली में, और किसी के मुख से वो निकलती है तो हमको लगता है अरे देखा मैंने मिस कर दी नहीं, तो वो ज्यादा हम तुरंत पकड़ लेते हैं उस पॉइंट को, वो शायद पकड़ भी ऐसा लेंगे कि वो जीवन का अंग हो जाएगा, अरे एक पॉइंट और भूल गई, वो अनुभव जीवन का अंग बन जाता है। अनुभव ऐसी चीज है कि वो जीवन का अंग बन जाता है। ये अनुभव अगर चीज हो जाती है तो अंग बन जाता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आज की पॉइंट, वही भूल गई। जो अच्छी लगती है वही भूल जाती है।
ठीक है ना, वैसे अनुभव अंग अंग को तो भूल रहे हैं।
जीवन का अंग है, शरीर का अंग नहीं।
जीवन भी तो शरीर में ही है।
फिर पूरा भाषण के ऊपर, फिर स्नेह मिलन के ऊपर, फिर लवली नवस्था, मनसा सेवा, मनसा सेवा भी पावरफुल हो, और लास्ट में डबल से ये सारा मुरली का।
मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा एकाग्रता और व्यर्थ,
ये दो पॉइंट है। देखा ये भी भूल गई थी, एक मनसा सेवा के लिए दो बातें चाहिए, एक तो एकाग्रता की आवश्यकता है और दूसरा व्यर्थ समाप्त हो जाए। ये दो चीजें अगर होगी तो ही मनसा सेवा हो सकती है आज की मुरली से। वैसे मनसा सेवा के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, बेहद का वैराग्य, वैराग के बिना मनसा सेवा नहीं
होती।
जिसको हम सकाश दे रहे हैं ना, उनसे हमारा वैराग हो, ऐसा हो नहीं सकता हमारा बहुत ज्यादा लगा हो और हम उसको हो गए, हमारी सकाश में वो सब मोह मिक्स होगा फिर। हमें जिसको सकाश देनी है उससे हम डिटैच्ड हो, विरक्त हो उससे, वितराग भाव मन में हो उस आत्मा के प्रति। हमारा अगर बहुत अधिक मोह है, अगर हम अपने लौकिक वालों को भी, भाई बहन या किसको भी सकाश दे रहे, उनसे भी हम डिटैच हो पूरी रीति से, पूर्ण रीति से, तो ही हमारी सकाश काम करेगी। क्योंकि बिना बेहद के, वैराग के सकाश देना की, देने की सेवा हो नहीं सकती। अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, वरदान ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मी स्थिति, अमृत वेला कहते हैं, तो अमृत बांटता है ब्रह्मा, ज्ञान सूर्य लाइट माइट आपको दे रहा है, और ब्रह्मा क्या करता है, भाग्य बांटता है। तो बुद्धि रूपी कलश कैसा हो, योग्य हो, और सारे दिन के लिए बना मुहूर्त हो, श्रेष्ठ कर्म हो तो मुहूर्त हो, रुकावट ना हो, थकान नहीं हो, कुछ दो तीन वाक्य कहे।
वृत्ति परिवर्तन करनी,
वृत्ति परिवर्तन करनी है, और स्लोगन,
स्लोगन क्रोधी का काम है, क्रोध करना आपका काम है, स्नेह देना।
बहुत ही छोटा है ना, बड़ा आसान।
बोलना तो बड़ा ही जी, फट से बोल दिया।
कितना फटाफट बोल दिया, क्रोध कर रहा है करने दो, अच्छी बात है।
स्नेह देते रहो,
हम स्नेह देते रहे, स्नेह का स्टॉक ही तो खत्म हो जाता है, कहाँ जा रहा है।
क्रोध का स्टॉक जागृत हो जाता
है, कहाँ गम हो जाता है पता नहीं।
लेकिन दोनों चीजें हैं, स्नेह भी अंदर है, जब कोई स्नेह देता है तो स्नेह पैदा होगा, नहीं तो वो सोया रहा।
नहीं, स्नेह तो हमारा सबके लिए, पर उसके लिए कैसे,
उसके लिए
जो जो लास्ट संडे की मुरली क्या थी, कड़े संस्कार वाली आत्मा, गाली देने वाली आत्मा, आत्मा पत्थर दिल वाली आत्मा, ऐसे के प्रति रहम भाव, ऐसे के प्रति लॉ और लव का बैलेंस, ऐसे के प्रति अहम वहम नहीं, ऐसे के प्रति सबसे पहले उनकी फर्स्ट स्टेप क्षमा करो, सेकंड स्टेप महिमा, थर्ड स्टेप शिक्षा। हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट हमको एक्शन चाहिए, थर्ड स्टेप। हमारा मन अच्छा, चलो हम क्या, कभी कभी महिमा करने के लिए राजी नहीं है, ये दो चीज के लिए हमारा मन राजी नहीं है, ना तो उनको हम क्षमा करना चाहते हैं, ना तो महिमा करना चाहते, पर हम उनको परिवर्तन जरूर करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है थर्ड स्टेप। बाबा कहते हैं पहले उनको क्षमा कर दो फिर महिमा करो। अच्छा चलो, महिमा नहीं करनी है तो कम से कम क्षमा करके फिर डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर भी आ सकते हैं।
हम डायरेक्ट बयान
तो सफलता थोड़ी कम मिलेगी हमें किसी की, अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसकी महिमा नहीं करना चाहते, बोलो मन राजी नहीं है उसकी महिमा करने से। मन क्षमा तो कर दिया, वो भी मन से कर दिया, उसके सामने नहीं तीन बाबा ने तीन स्टेप का ये बताए कार्य प्रणाली, ये तीन है, थर्ड तीन प्रक्रिया है सफल। वो
पहले अपना पंचायत तब तक क्षमा होगी।
हाँ, वो क्षमा जो है, जब तक आत्मा को क्षमा नहीं करते, उसके अवगुणों को नहीं भूलते, बुराइयों को नहीं भूलते, दिल पे नहीं रखते, समाते नहीं, तब तक वो क्षमा नहीं होती। एक फिर उसकी महिमा, और उसके बाद में शिक्षा देना। डायरेक्ट किसी को शिक्षा दोगे, सिखाओगे, बताओगे, हम वही करते हैं ना,
क्षमा करते भूल जाना, ये बहुत बड़ी शिक्षा देना।
हाँ, उसी में शिक्षा समाई हुई है, क्षमा कर देना आत्मा को। हम क्षमा नहीं कर पाते ना, हम क्षमा नहीं कर पाते आत्मा, उसकी छोटी सी गलती हम 10 साल तक हमारी बुद्धि में रहती है ताजा। चुप रहना, पर अंदर क्या चल रहा है वो क्या पता।
पावरफुल स्टेज
का अंदर क्या चल रहा है। अरे हाँ वो भी एक पॉइंट है, जितनी स्टेज पावरफुल हो
सफलता ही बात
नहीं। वो पहले मधुबनी नहीं, वो डबल विदेशियों से मुलाकात, स्टेज जितनी पावरफुल उतनी ही सफलता, उतना ही सफलता के लिए डबल विदेशियों से मुलाकात।
क्या कुछ ऐसा कुछ
डबल विदेशियों
है
ना,
पावरफुल स्टेज। तो ये था आज का मुद्दा, और कोई पॉइंट याद है? 5 मिनट है हमारे पास।
हाँ ये है ना पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभव में सफलता हो गया,
अनुभव में हो गया सफलता। लाइफ से तंग नहीं होना है। कौन से लाइफ से? ब्राह्मण लाइफ
से।
उधर वैरागी भी लाना, तंग भी नहीं होना है, संभालना।
ये ऐसा तो नहीं है ना बाबा ने ऐसे बांध दिया चेयर पे और करो क्या करना है। चेयर से बांध दिया ना, ये कर सकते ना वो
कहीं भी टिक नहीं
कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, बस बांध ही दिया है चेयर पे। बोलो देखो इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, बुरा ना देखो ना सुनो ना करो ना बोलो।
फिर देखने के लिए भी बोलता है फरिश्ता देखो,
वही ना वही तो बोल रहा हूँ। चेयर पे बांध के रख दिया और बोला अभी इधर भी नहीं देखना इधर भी नहीं देखना, ऐसे ऐसे करते रहो बस। तीन बंदर बुरा ना देखना, एक बंदर बुरा नहीं देखता है, उसका दूसरा पहलू बताता हूँ। एक बंदर बुरा नहीं देखता पर दो बंदर बुरे देख रहे हैं, एक बंदर बुरा नहीं बोलता पर दो बंदर बुरे बोल रहे हैं, एक बंदर बुरा नहीं सुनता पर दूसरे दो
ये बुरे
सुन रहे हैं।
तो एक ही एक काम कर रहे हैं बाकी सारे काम
बाकी
कर रहे।
तो दो वो कर रहे हैं।
वो जो दिखाए ना बंदर,
तीन बंदर है ना, एक तो आंख बंद है
सुन तो रहा है,
दूसरे दो तो सुन देख रहे हैं ना बुरा
सुन तो रहा है,
ऐसा नहीं देख रहा है। एक बुरा नहीं सुन रहा है पर दूसरे दो तो सुन रहे हैं, एक बुरा नहीं बोल रहा है पर दूसरे दो तो बोल रहे हैं।
एक साथ ही करें और एक दोनों के काम तो खुले है ना,
नहीं ये दूसरी बात बता रहे, तीनों एक साथ मतलब ये ऐसा एक प्राणायाम है, इसको कोई तो बंद कहा जाता है जिसमें कान बंद नाक बंद और
मुंह बंद
और फुलाते हैं जोर, ऐसा एक प्राणायाम है एक, तो वो वाली बात कर रहे थे।
अरे नाक वाली बंद,
उनका इशारा उस तरफ था आप समझे नहीं।
प्राणायाम।
चलो इसको खत्म करते, मुझे एक छोटी कहानी याद आई। एक व्यक्ति रहता है वो ऐसे मरनासन्न रहते हैं, मरते हुए रहता है बूढ़ा, उसके चारों बेटे आसपास खड़े रहते हैं और उसके मुंह से आवाज निकलते रहता है ब ब ज ज। उनको लगता है ब ब ज ज ये क्या बोल रहा है बूढ़ा आदमी, ब ब ज ज बक्सा, अच्छा झाड़ के नीचे। सारे बेटे ऐसा सोचते कहीं बक्सा झाड़ के नीचे, अरे बुलवाओ उनसे बुलवाओ, क्या बोल रहा है ये, मरना नहीं चाहिए। मतलब उसके पिताजी रहते और रिश्तेदार सारे खड़े रहते तो वो एक ही बात बोलते रहते हैं ब ब, मारवाड़ी रहता है वो, ब ब ज ज। तो बेटे बड़े ये होते सब नीचे झुकते, बोलो पिताजी क्या क्या। तो डॉक्टर बोलता है एक बहुत महंगा इंजेक्शन है, तो डॉक्टर को वो रिक्वेस्ट करते कि कैसे भी करके इनसे बुलवा दो। डॉक्टर बोलता है एक बहुत महंगा इंजेक्शन है, वो अगर दूंगा तो वो थोड़ा दो तीन शब्द बोल पाएंगे पर वो जिंदा नहीं बचेंगे, मृत्यु तो निश्चित है। वो बोलते फिर भी बुलवाओ क्योंकि घर में इतने सारे पेड़ है बाहर, अभी कौन सा बकता ब ब झ ज ब ब झ ज। वो उसको इंजेक्शन देते हैं, फिर सारे ऐसे झुकते हैं नीचे सुनने के लिए। तो वो कहता है अरे मूर्खो मुझे क्या देख रहे हो, वो देखो बछड़ा वो झाड़ू चबाए जा रहा है, उसको छुड़ाओ पहले वो झाड़ू को। हाँ वो मारवाड़ी लेता है फिर बोलता है, तो अनुमान लगाते ना कि ब ब बच्चा
झाड़ू मार गया
पूरा हो गया।
कहानी पहले से भरी
इसलिए कहना कंजूस।